ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದೃಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾ ಶ್ರೀಲ ಗೋವಿಂದದೇವೋ ಪ್ರಶ್ರಾಲಿವೇ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತ ಹರ್ಷಂ ವೇಣು ಸ್ವನೇರ್ ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ರೇಯಸ್ತು ನಃ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಂ ವಂದೇ ಬಾಲೋಪಿಯದನುಗ್ರಹಾತ್ ತಾರೇನ್ನಾಮತಗ್ರಾಹಾತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಗರಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಗಾನನರ್ತನ ಕಳಾ ಆತೋಂಜನೀ ಪ್ರಾಜಿತ ಶಂಖಕ್ತಾವಳಿ ಹಂಸ ಶಕ್ರಮಧುಕ ಶ್ರೇಣೀ ವಿಹಾರಾಸ್ಪದಂ ಕರ್ಣಾನಂದಿ ಕಳಾಧ್ವನಿರ್ವಹತು ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಮರುತ್ಪ್ರಾಂಗಣೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ದಯಾನಿಧೇ ಕವಲಸಲ್ ಲೀಲಾಸುಧಾ ಸ್ವರ್ಧುನಿ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೋ ಕನಕಾವಧಾತೋ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕವಿತರೋ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರೋ ಕರುಣಾವತಾರೋ ನಮಸ್ತ್ರಿಕಾಲ ಸತ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಯಾಥಸುತಾಯ ಚ ಸಮೃತ್ಯಾಯ ಸಪುತ್ರಾಯ ಸಕಲತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ವಂದೇ ಗುರುಂ ನೀಶಭಕ್ತಂ ಈಶಂ ನೀಶಾವತಾರಕಾಂ ತತ್ಪ್ರಕಾಶಾಂ ಸತಚ್ಛಕ್ತಿಃ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಜಗಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ಸೋದಿತೋ ಗೌಡೋದಯೇ ಪುಷ್ಪವಂತೋ ಚಿತ್ರೌ ಸಂತೌ ತಮೋನುದೌ ಯದದ್ವೈತಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಿ ತದಭ್ಯಸ್ಯ ತನುಭಾ ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಮಿ ಪುರುಷ ಇತಿ ಸ್ವಸ್ಯಾಂ ಶ ವೈಭವಃ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣೋ ಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಸ ಸ್ವಯಂ ಅಯಂ ನ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತಿ ಪರದತ್ವಂ ಬರಮ್ಯ ಅನರ್ಪಿತ ಚರಿಂ ಚಿರಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಾವತೀರ್ಣ ಕಲೋ ಸಮರ್ಪಯತು ಉನ್ನತೋಜ್ಜಲರಸಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಶ್ರಿಯಂ ಹರಿಪುರದ ಸುಂದರ ದ್ಯುತಿ ಕದಂಬ ಸಂದೀಪಿತಃ ಸದಾ ಹೃದಯ ಕಂದರೇ ಸ್ಪೃಹತು ವಸಚಿನಂದನಃ ರಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯ ವಿಕೃತಿ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾತ್ಮನೋ ವಿಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌತೌ ಚೈತನ್ಯಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಮದೂನ ತದ್ವಯಂ ಚೈಕ್ಯಮಾಪ್ತಂ ರಾಧಾಭಾವಕೃತಿ ಸುವಲಿತಂ ನೋಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕಿದೃಶೋ ವಾನೈವ ಸ್ವಾಧ್ಯೋ ಏನದ್ಭುತ ಮಧುರಿಮಾ ಕಿದೃಶೋ ವಾ ಮದೀಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮದನುಪತಃ ಕಿದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ಲೋಭಾತ್ ತದ್ಭಾವಾಢ್ಯ ಸಮಾಜನಿ ಶಚಿಗರ್ಭ ಸಿಂಧು ಹರಿಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಾ ತಮೇಕ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಶರೀರಧಾರಿ ಕೃಪಾಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರದ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ದಶಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಭಾಂಗಾಶ್ರಪಾಶದಂ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೈರ್ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
कल हम वेदों का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण है। वेदों को अध्ययन करते हुए अलग अलग लोग कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड या इन कांडों को चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविक वेदों का उद्देश्य कृष्ण है करके मालूम नहीं करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बात को बताते हैं कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को जानना, कृष्ण के साथ हमारा संबंध को जानना। तो इसके बाद वर्णन करते हैं कृष्ण का रूपों का, कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों का। तो इसके बारे में अभी सभी लोग जो है ना, आपके नोट्स में 16वां पेज है जिसके अंदर टेबल है उसको पढ़िएगा, 16th पेज। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि मुख्य तरीके से कृष्ण के तीन स्वरूप है, एक है स्वयं रूपा, दूसरा है तदेकात्म रूपा, तीसरा है आवेश रूपा। तो सबसे पहला स्वयं रूप के बारे में वर्णन करते हैं। वैसे कृष्ण के अनंत स्वरूप है, अनलिमिटेड फॉर्म्स ऑफ कृष्ण, लेकिन ये अनंत स्वरूपों में तीन विभाजन जरूर किया गया है। भागवत में कृष्ण को सारे स्वरूपों के स्रोत के रूप में माना गया है, इसलिए बोला जाता है कि ये तेज हमस कलप पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। ये तेज हमस कलप पुंसान, श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी पाद सारे स्वरूपों को वर्णन करते, रूपों को वर्णन करते, 24 अवतारों का 24 स्वरूपों को वर्णन करते। वो वर्णन करने के बाद, 24 स्वरूपों को वर्णन करने के बाद अंत में बता दे कि ये तेज हमस कलप पुंसान, क्योंकि इन 24 रूपों में कृष्ण का भी नाम, 24 अवतारों में कृष्ण का नाम डाल दिया, तो इसलिए बोलते मैंने एक गलती कर दिया। ये तेज हमस कलप पुंसान, जितने भी लोगों का भी वर्णन किया गया है वो कौन है, ये तेज अंश और कला। श्रीमद् भागवतम सारा जो 18,000 श्लोकों से युक्त भागवतम है, ये भागवतम किसके ऊपर आधारित है, ये श्लोक के ऊपर आधारित है। जैसे हर एक ग्रंथ का एक श्लोक होता है, उसका नाम है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र मतलब वो श्लोक जिसके ऊपर सारा ग्रंथ आधारित है, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग वर्ड्स। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है, जो फेमस वर्ड से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुपूरेण कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये परिभाषा सूत्र है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है, ये ते चमस कलप पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाय व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। यानी ये थे, मतलब अभी तक जो लिस्ट बताया गया है कि क्योंकि इस श्लोक के पहले सुत गोस्वामी पाद 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, ये 24 अवतारों को वर्णन करते करते बोलते हैं कि मैं कितना बताऊं, अवताराय असंख्याय हरे सत्यदेजाः यथा विदाशन कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। एक बड़ा सरस, बड़ा सा एक लेख है, एक लेख है, उसे आप कितना सारे उतने सारे आप ये चैनल्स निकाल सकते हो, उससे बहुत सारे खड्डा खोद के निकाल के उधर से पानी निकालते, बहुत सारे चैनल्स बना सकते हो। तो अवताराय असंख्य हरे सत्यनिधे द्विजा, लेकिन फिर भी ये सारे अवतारों के स्रोत कौन है, कृष्ण है। ये तेज अंश कला, अंश मतलब कृष्ण के विस्तार, कला मतलब विस्तार के विस्तार। They are part and part. They are expansions of Krishna and expansions, expansions of Krishna. Amsha means expansion. Kala means expansion of the expansions of Krishna. Ye tej amsha kala pumsan. Krishna's tu bhagavan swayam. Baki sab avatar hai, lekin Krishna kaun hai? Avatari hai. Indriyar vyakulam lokam rudayanti yuge yuge. Indriyari, Indra ke jitne bhi shatru hai, व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे, बार बार हर एक युग में इंद्र के शत्रुओं को, यानी इंद्र मतलब देवता, देवताओं के शत्रु को ने दाना, उनको वध करने के लिए श्री कृष्ण इस अलग रूपों को धारण करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों का कारण है और सारे अवतारों के फॉर्म्स के स्रोत है। तो जैसे अभी बताया कि भगवान के रूपों का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या बोलते हैं कि भले कि श्री कृष्ण का अनंत रूप है, उन अनंत रूपों का तीन विभाजन किया गया है, एक है स्वयं रूप, दूसरा है तदेकात्म रूप, तीसरा है आवेश रूप। सबसे पहला स्वयं रूप का वर्णन करते हैं। यह स्वयं रूप का दो स्वरूप है, दो रूप है, एक है स्वयं प्रकाश, एक है स्वयं रूप। स्वयं प्रकाश और स्वयं रूप, ये स्वयं रूप अगर मान लो कृष्ण से पूछा जाए आप कौन हो, व्हाट हु आर यू टेल मी, तो वो अपने आप को एक ग्वाल बाल के रूप में अपना पहचान बताएंगे, आई एम ए काउ हर्ड बॉय। भले ही नरसिम्हा वामन इतने सारे कृष्ण अवतार है, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण से पूछा जाए स्वयं आपका निजी स्वरूप क्या है, तो क्या बताएंगे, He always remains in Vrindavan, that is the स्वयं रूप of Krishna। और एक है स्वयं प्रकाश, कृष्ण ही है लेकिन उनका प्रकाश स्वरूप है, वो उनका एक विस्तार है, एक कृष्ण और कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन। ये जो स्वयं प्रकाश है उसमें दो विभाजन है, एक है प्रभव प्रकाश, दूसरा है विभव प्रकाश, प्रभव विभव। प्रभव प्रकाश के अंतर्गत क्या है, कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं लेकिन उनके ही जैसे दिखाई पड़ते, दोनों के बीच में अंतर नहीं दिखाई पड़ते विस्तार में और कृष्ण में, बॉडीली फीचर्स आर ऑल सेम। जैसे कृष्ण रासलीला के समय उन्होंने 16,108 गोपियों के साथ उन्होंने 16,108 स्वरूपों को विस्तार किया था, और सारे गोपियों को ऐसा लग रहा था कृष्ण जो है मेरे साथ में और किसी के पास नहीं है, यानी वो जो स्वरूप है कृष्ण के जो अनंत रूप में या 16,108 स्वरूपों में विस्तार किए रासलीला के समय और साथ साथ में द्वारका में भी, और द्वारका में भी कृष्ण 16,108 रानियों के महल में 16,108 स्वरूपों को लेकर बैठे, और सभी कृष्ण एक ही जैसे दिखाई पड़ते थे, उस एक ही जैसे, देयर इज नो डिफरेंस। जो शारीरिक रूप में जो अंतर नहीं है वो जो रूप है उनको क्या बोला जाता है, प्रभव प्रकाश। ये स्वयं रूप कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, ये 16,108 रानियों के लिए या गोपियों के लिए जो जिनके शारीरिक रूप में कोई अंतर नहीं है, ये जो है प्रभव प्रकाश बोला जाता है, इट इज ए प्रभव प्रकाश। तो एक बार नारद मुनि द्वारका जब गए तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे हे कृष्ण इतने सारे 16,108 महलों में है और अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप कर रहे हैं। नारद मुनि जो है वो जानते हैं, योगिक क्षेत्र को जानते हैं, और एक व्यक्ति का शौवरी मुनि, शौवरी मुनि अपने आप को 8 रूपों में विस्तार कर सकते थे, 8 रूपों में विस्तार करके अलग अलग प्रकार अलग जगह वो कार्य कर सकते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग रूपों में जो मुख्य स्वरूप है अगर वो मुख्य स्वरूप हाथ उठाता है तो बाकी सब स्वरूप भी हाथ उठाएगा। लेकिन इधर कृष्ण का अद्भुत सा ये है कार्य ये है कि वो 16,108 स्वरूपों में विस्तार होने के बावजूद भी वो अलग अलग स्वरूप अलग अलग प्रकार के कार्यकलापों करते हुए अलग अलग प्रकार की भावनाओं को एक व्यक्ति निजी व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहे थे, और सारे रानियों को ऐसा लग रहा था कृष्ण मेरे साथ में, जिस प्रकार सारे गोपियों को ऐसा लग रहा था कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे। ये जो कृष्ण के रूप है इनको प्रभव प्रकाश बोला जाता है। लेकिन वैसे ही कृष्ण का स्वयं प्रकाश के अंतर्गत विभव प्रकाश है, तो विभव प्रकाश के अंतर्गत क्या है, कृष्ण के अलग रूप होंगे, उनके एक्सपेंशंस, देयर इज डिफरेंस इन बॉडीली फीचर्स एंड कलर, उनके रंग में और उनके शारीरिक फॉर्म में, इनके शरीर में थोड़ा सा अंतर रहता है। इनका दो उदाहरण है, एक है बलराम जी, बलराम जी कृष्ण के विभव प्रकाश है, और जब कृष्ण मथुरा में जब जन्म लिए, मथुरा में कृष्ण का जन्म लेते ही या उनको 4 हाथ था, तो मथुरा और द्वारका में कृष्ण के कभी 2 हाथ होते हैं कभी 4 हाथ होते हैं। जैसे हम मथुरा में देखते हैं कि जैसे वसुदेव और नंद महाराज देवी की प्रार्थना किए वसुदेव और देव की, तो कृष्ण चतुर्भुज रूप से तुरंत तो दो भुज हो गए, तो वृंदावन में कृष्ण को कभी भी 4 भुजाएं नहीं होते, केवल 2 भुज होते हैं, लेकिन मथुरा और द्वारका में कभी दो भुज कभी चार भुज हो सकते हैं। तो इसलिए ये चतुर्भुज वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण है, वसुदेव कृष्ण, ये वसुदेव कृष्ण और बलराम, ये दोनों को विभव प्रकाश के अंतर्गत बोला जाता है। असत में कृष्ण में और बलराम में कोई अंतर नहीं है, अंतर किस में है, केवल रंग में है। इसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज व्हाइट कृष्णा। कृष्ण जो है वो काले बलराम है और बलराम जी गोरे कृष्ण है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इट इज जस्ट अ डिफरेंस इन कलर। तो कृष्ण के स्वयं रूपा, इट इज द रियल फॉर्म ऑफ कृष्णा, रियल फॉर्म ऑफ कृष्णा सभी तो अस्थि है, सभी रियल है, लेकिन निजी रूप क्या है, व्हाट इज योर प्राइमरी फॉर्म। तो ही श्याम सुंदर, ही इज ए गोल ग्वाल बाल, इज ऑलवेज रिमेन्स इन वृंदावन। तो कृष्ण का वो जो वृंदावन वाला जो स्वरूप है वो उनका निजी स्वरूप है, उनसे पूछा जाएंगे, दिस इज कॉल्ड स्वयं रूपा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप के वर्णन करने के बाद नेक्स्ट वर्णन करते हैं तदेक आत्मा के रूप में बारे में। तो ये तदेक आत्मा रूप 15वें पेज में है। तदेक आत्मा रूप में क्या है, ये शारीरिक रूप में अंतर रहता है और उनके कार्यकलापों में भी अंतर रहता है। तो ये तदेक आत्म रूप के दो मुख्य विस्तार है, एक है विलास, दूसरा है स्वांश। ये स्वांश के अंतर्गत जा रहे जितने भी अवतार है, अवतार आते हैं, तो इसलिए हम स्वांश के बारे में बाद में अंत में चर्चा करेंगे। सबसे पहला विलास रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, वी अंडरस्टैंड अबाउट विलास पास्टेंस ऑफ कृष्ण। भगवान के जो कृष्ण के तदेक आत्म के अंतर्गत विलास जो रूप है, विलास पास्ट टाइम फॉर्म, विलास मतलब जो लीला के लिए है, पास्ट टाइम स्वांश ऑफ कृष्ण, उसका भी दो प्रकाश है, एक है प्रभव दूसरा है विभव। ये प्रभव प्रकाश में भगवान के कृष्ण के जो सबसे पहला चतुर्व्यूह है वो आते हैं। ये जो वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार हमेशा मन में रखना चाहिए, इनको चार लोगों को या चार स्वरूपों को, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार को चतुर्व्यूह बोला जाता है, दे आर कॉल्ड व्यूहस। भगवान के अलग अलग स्तर है, सबसे पहला है स्तर परा, परा उसके बाद व्यूह, व्यूह के बाद पुरुषा, पुरुषा के बाद अंतर्यामी, अंतर्यामी के बाद अर्चा। लेकिन अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहला परा, परा का मतलब स्वयं रूपा। तो स्वयं रूप कृष्ण के विस्तार बलराम है और बलराम से सबसे पहला विस्तार क्या होते हैं, ये है वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये पहला चतुर्व्यूह माना जाता है, दे आर द फर्स्ट चतुर्व्यूह। ये पहला चतुर्व्यूह जो है द्वारका और मथुरा में वो हमेशा नित्य रूप में वो स्थित रहते हैं। हमको हमेशा ये बात को ध्यान में रखना होगा कि दो जगत है, एक है आध्यात्म जगत, दूसरा है भौतिक जगत। और हम कहाँ निवास कर रहे हैं, हम सब भौतिक जगत में निवास कर रहे हैं। और आध्यात्म जगत जो है उनका विस्तार बारे में बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, लेकिन इतना अनंत है, ऐसे बहुत भौतिक जगत इतना बड़ा है, इसका ही अंत और शुरू कहाँ मालूम नहीं पड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत तो इतना वो भी अनंत है और उसके अंतर्गत ये वैकुंठ लोक है और ये कृष्ण के कृष्ण लोक है। ये कृष्ण लोक के तीन विभाजन है, कृष्ण केवल तीन जगह निवास करते हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। तो अभी ये जो स्वयं रूप कृष्ण है वो कहाँ निवास करते हैं, स्वयं रूप कृष्ण इज ऑलवेज इन वृंदावन। वही कृष्ण अपने आप को जब विस्तार करते हैं वसुदेव कृष्ण के रूप में, तो वो द्वारका और मथुरा में रहते हैं। द्वारका और मथुरा में रहने वाले कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण में अंतर क्या है, वृंदावन के अंदर का जो कृष्ण है उनके पास बांसुरी रहता है और उनके पास मुकुट नहीं रहता है, हमेशा त्रिभंग फॉर्म में, त्रिभंग ललिता रूप में निवास करते हैं। और द्वारका कृष्ण के हाथ में कोई बांसुरी नहीं होता है और मथुरा में, द्वारका में कृष्ण के पास मोरपंख नहीं होता है और उनके पास बांसुरी नहीं होता है, क्योंकि उधर एक राजा है, बांसुरी किसको चाहिए, एक ग्वाल बाल को चाहिए। राजा बनने के बाद बांसुरी बजाएंगे तो लोग जी क्या सोचेंगे, अरे हंसेंगे क्या है कैसा है। तो द्वारका कृष्ण कौन है, ऐश्वर्य रूप वाले कृष्ण है। मथुरा और द्वारका में कृष्ण जो ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं और मथुरा इधर वृंदावन में कृष्ण अपनी मधुरता को प्रकाशित करते हैं। ये कृष्ण का जो माधुरी है वो ऐश्वर्य को ढक देता है वृंदावन में, लेकिन मथुरा और द्वारका में वो ऐश्वर्य माधुरी को ढक देता है। तो ये जो चार स्वरूप है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये बलराम के विस्तार है। कृष्ण बलराम के विस्तार करते हैं, बलराम जी जो है ये पहला चतुर्युग के रूप में विस्तार करते हैं। द फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रपल एक्सपेंशन, जो ये जो पहला प्रभव विलास के अंतर्गत वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आपके चार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड पहले कॉलम लिखा है, ये चार हमेशा द्वारका और मथुरा में नित्य रूप में, ये चार कोने में, द्वारका और मथुरा के चार कोने में ये वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यानी फर्स्ट क्वार्टरल एक्सपेंशन हमेशा नित्य निवास करते हैं और एक मथुरा को दे टेक केयर ऑफ इट, उनको देखभाल करते हैं। और ये चार स्वरूपों में जो संकर्षण है, वसुदेव संकर्षण है, ये संकर्षण से और एक विस्तार निकलता है और एक एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आपके जो नेक्स्ट कॉलम में विभव विलास के अंतर्गत जो है, ये कॉलम में जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव है, इनको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन या दूसरा चतुर्व्यूह, द सेकेंड चतुर्व्यूह। और ये दूसरा चतुर्व्यूह जो है वो कहाँ निवास करते हैं, ये वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, एक बार एक अच्छी तरह समझ लेने के बाद हमको बहुत आनंद का अनुभूति होता है इसका, ये आध्यात्मिक जगत का एक ज्योग्राफी, जैसे बच्चों को एक सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी करके, वो बहुत ही संसार का ज्योग्राफी सिखाते हैं, दिल्ली कहाँ है, ये कहाँ है, उधर कहाँ है, वैसे ही वो एक आध्यात्मिक जगत में हमको जाना है, आध्यात्मिक जगत में हमको जाना है तो आध्यात्मिक जगत का ज्योग्राफी मालूम करना अच्छा है। इट इज़ वेरी गुड टू नो द ज्योग्राफी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उधर कुछ बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं और वैकुंठ लोक से भी परे एक लोक है, वो है कृष्ण लोक। जैसे आध्यात्मिक जगत को ऐसा विचार एक कल्पना कीजिए, उसके अंदर अनंत वैकुंठ लोक है, अनलिमिटेड वैकुंठ लोक, बस उन वैकुंठ लोकों से सर्वश्रेष्ठ या उनसे परे और एक लोक है कृष्ण लोक। ये कृष्ण लोक में तीन विभाग है, एक है द्वारका और मथुरा और वृंदावन। द्वारका, मथुरा, वृंदावन में अंतर क्या है, द्वारका मथुरा में कृष्ण जो है ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं और मथुरा में द्वारका और मथुरा में कृष्ण ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं और वृंदावन में वो माधुरी को प्रकाशित करते हैं। तो यही अंतर है। और ये वैकुंठ लोकों में वो कृष्ण कृष्ण के रूप में निवास नहीं करते बल्कि कृष्ण नारायण के रूप में निवास करते हैं। तो वैकुंठ लोक में कौन है, नारायण है। कृष्ण कहाँ है, वो कृष्ण लोक में है। वो कृष्ण लोक के अंदर तीन विभाग है, एक है वृंदावन, द्वारका और मथुरा। द्वारका मथुरा में कृष्ण है लेकिन किस रूप में है, ऐश्वर्य रूप में है। वृंदावन में कृष्ण किस रूप में है, माधुरी स्वरूप में है। तो ये बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो पहला चतुर्व्यूह है जो बलराम से विस्तार होता है वो है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये पहला चतुर्व्यूह जो है वो मथुरा और द्वारका में निवास करते हैं। लेकिन उस पहला चतुर्व्यूह से जो विस्तार आता है, पहला चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उस संकर्षण से जो उत्पन्न हुआ वो विस्तार है, वो दूसरा चतुर्व्यूह माना जाता है। ये कहाँ निवास करते हैं, ये वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो ये दूसरा चतुर्व्यूह से, दूसरा चतुर्व्यूह का संकर्षण से तीसरा चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है, तीसरा चतुर्व्यूह का संकर्षण से चौथा, इस प्रकार जितने भी अनंत वैकुंठ लोक है उतने अनंत चतुर्व्यूह विस्तार होते हैं। तो द अनलिमिटेड वैकुंठस आर ऑक्युपाइड बाय दिस अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ दिस अनलिमिटेड क्वार्टरल एक्सपेंशंस। तो हमने ये दूसरे बॉक्स में जो विभव विलास के अंतर्गत आपने जो देखा वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वैसा बहुत सारे कॉपीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे जितने वैकुंठ लोक है उतने लोकों में चार दिशाओं में निवास करते हैं। और ये वासुदेव जो दूसरे चतुर्व्यूह के वासुदेव है उनमें से तीन और विस्तार आते हैं, केशव, नारायण, माधव, संकर्षण से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध से ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। तो आप ये नाम पढ़े होंगे तो जरा सा आपके अंदर, अरे ये तो मैं कुछ जानता हूँ इन नामों को। जो लोग भक्त लोग हर रोज जो 12 जगह तिलक लगाते हैं, द्वादश तिलक लगाते हैं, वो इन्हीं नामों से युक्त है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशवाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। तो यही नहीं बल्कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार जैसे तीन कैलेंडर होते हैं, क्या है सबसे पहला कैलेंडर उसको जो साधारणतः हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं, अभी कौन सा मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है, मार्च का महीना, ये इंग्लिश कैलेंडर है। और एक है वैदिक कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर के चैत्र वैशाख आषाढ़ा ज्येष्ठा वो सब वैदिक कैलेंडर। लेकिन हम वैष्णव होने के नाते हम वैष्णव कैलेंडर के अनुसार नाम क्या रहेगा, मास का नाम ये रहेगा, केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन ये नाम रहेगा। जैसे हम सब लोग कार्तिक मास को क्या बोलते हैं, दामोदर मास बोलते हैं। जैसे कार्तिक जो है वो दामोदर है, उसके बाद जो मास आता है वो केशव होगा, उसके बाद नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन। अरे मार्च के समय माघ मास के अंतर्गत जो होगा ये है त्रिविक्रमा वामना, इनमें से एक मास अभी चल रहा होगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर एक्सपेंशन द्वारका मथुरा में निवास करते हैं। पहला चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह का संकर्षण से जो दूसरा चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं वो द्वारका सॉरी वैकुंठ के चार कोने में निवास करते हैं, और जो दूसरा चतुर्व्यूह से के संकर्षण से उत्पन्न हुआ तीसरा चतुर्व्यूह है वो वैकुंठ और एक वैकुंठ लोक के चार कोने में निवास करते हैं। तो वैसे जितने वैकुंठ लोक के जितने अनंत वैकुंठ लोक है उतने अनंत विस्तार है, और अनंत वैकुंठ लोकों के चार दिशाओं में वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध अपने आप को विस्तार करते हैं, और हर एक वैकुंठ लोक में एक एक विस्तार वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर इस प्रकार वो अपने आप को विस्तार करते हैं। तो दीज 24 फॉर्म्स आर ग्रुप्ड इन फोर फोर्स फेसिंग फोर डायरेक्शंस अराउंड नारायण कृष्ण एंड वैकुंठ धाम। तो नारायण कौन है, कृष्ण के ऐश्वर्य का स्वरूप है। कृष्ण के दो प्रकार के ऐश्वर्य स्वरूप है, कृष्ण के ही स्वयं ऐश्वर्य स्वरूप तो द्वारका वृंदावन में मथुरा में निवास करने वाले कृष्ण ऐश्वर्य स्वरूप है। लेकिन कृष्ण अपने आप को नारायण के रूप में जब विस्तार करते उधर केवल ऐश्वर्य है, he is just experiencing दास्य रसा। अभी हम देख सकते हैं रस तत्व जब हम चर्चा किए रूप गोस्वामी एक बात का चर्चा में, उधर हमने देखा द्वारका और मथुरा में कृष्ण भले उनका ऐश्वर्यवान स्वरूप है, उनके माता पिता है, उनके मित्र है, सब है, लेकिन कृष्ण जब अपने आप को नारायण के रूप में विस्तार करते हैं वो केवल शांत और दास्य ये दो स्वरूप को भी आस्वादन करते हैं। नारायण का आपने कभी सुना है माता पिता है, कभी उन्होंने सुना नारायण का कोई मित्र है, कॉन्जुगल है, लेकिन वो भी दास्य ज्यादा प्रोडोमिनेंट है उधर। पद सेवनम लक्ष्मी जी नारायण का सेवा करती है, लेकिन भले ही वो माधुरी रस में बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो चरण कमलों के पास जाके चरण की सेवा करती है, एक दास्य रस उधर प्रिडोमिनेंट है। इधर हम नारायण या वैकुंठ लोकों में शांत और दास्य उपलब्ध होता है, वात्सल्य माधुर्य और साख्या ये नहीं होता है। तो कृष्ण जो द्वारका में है और मथुरा में है उनमें और कृष्ण के नारायण वाले स्वरूप में भी बहुत सारा अंतर है। तो वैकुंठ लोकों में हर एक वैकुंठ लोक में कृष्ण जो है अनंत नारायण के रूप में विस्तार करते हैं और वो उधर निवास करते हैं, और उन चार दिशाओं में संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये क्वाड्रुपल एक्सपेंशन निवास करते हैं। उसके अलावा अपने आप को ये चार चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न दे अगेन एक्सपैंड वो फिर से विस्तार करते वो है विभव विलास के अंतर्गत अधोक्षजा पुरुषोत्तम उपेंद्र अच्युत नरसिंह जनार्दन हरि कृष्ण। इसमें जो कृष्ण है ये कृष्ण और जो स्वयं रूप कृष्ण के सारा अंतर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को सारे जितने भी पंचरात्रि स्क्रिप्चर्स में क्योंकि पंचरात्र के ग्रंथों में ये सबसे पहला भगवान की अलग अलग स्वरूपों को वर्णन किया जाता है। क्योंकि पंचरात्र मतलब क्या है, पंचरात्र स्क्रिप्चर्स आर मेंट आर फॉर आर गिविंग अस द प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग द डेटी, किस प्रकार अर्चविग्रह को आप पूजा कर सकते हो उसके बारे में पंचरात्र ग्रंथ बताते हैं। लेकिन अर्चविग्रह का पूजा का विधि विधान बताने से पहले पंचरात्र ग्रंथ भगवान के अलग अलग रूपों का अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग विस्तारों का विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जितने भी 108 पंचरात्रि ग्रंथ है उनमें से अलग अलग प्रकार जहां जहां इन भगवान की विस्तारों का वर्णन किया गया उन सब का लेके संग्रह रूप में इधर हमको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। There is no comprehensive understanding of the forms of the Lord better than this presentation which Sri Chaitanya did to Sanatan Goswami. भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग विस्तारों का इससे अच्छा प्रेजेंटेशन और कहीं ग्रंथों में कहीं आपको प्राप्त नहीं होता है, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को प्रस्तुत किया। तो हरि एंड कृष्ण आर द विलास फॉर्म्स ऑफ अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध के जो है हरि और कृष्ण और नरसिंह जनार्दना, इस प्रकार समझना चाहिए कि और एक विस्तार है। ये हो गया तदेक आत्म रूप के अंतर्गत, ये विलास विलास के अंतर्गत प्रभव और विभव ये दोनों। ये सब चर्चा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को अर्च विग्रह के बारे में वर्णन करते हैं। वो नौ अर्च विग्रह के बारे में वर्णन, ही टॉक्स अबाउट नाइन सेवन कॉन्टेंट इज देयर, हां नो नॉट सेवन, देयर सेवन अर्च विग्रह, सॉरी नाइन नाइन अदर प्रोटेक्टर्स ऑफ द्वारका, ठीक है। सात अर्च विग्रह के रूप में बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि नित्य रूप में मथुरा में केशव मूर्ति के रूप में भगवान का पूजा होता है, जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम के रूप में, इसलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोला जाता है, प्रयाग में बिंदु माधव और मंदार पर्वत में मधुसूदन, अंधारण्य में वासुदेव पद्मनाभ जनार्दन ये तीन, और विष्णु कांची में वरदराज के रूप में और मायापुर में हरि के रूप में। ये अर्च विग्रह भगवान के ये क्षेत्रों में मथुरा जगन्नाथपुरी प्रयाग मंदार पर्वत में आनंदारण्य में विष्णु कांची में और मायापुर में ये नित्य रूप में सृष्टि के प्रारंभ से ही, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया और इधर अर्च विग्रह स्थापना किया मंदिर बना के उनको पूजा शुरू किया, सृष्टि के प्रारंभ से ये धामों में इन रूपों में ये कृष्ण अर्चा के रूप में निवास करते हैं। ये पंचरात्रि ग्रंथ अस्तित्व में श्री चैतन्य महाप्रभु अभी ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद को, ये कृष्ण के ये सब स्वरूप पंचरात्रि ग्रंथियों के जहां जहां वर्णन किया उन सब से लेके निचोड़ लेके हमको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले बताया कि भगवान के पांच स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर है परा, परा मतलब आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में भगवान स्थित है। दूसरा है व्यूहा, व्यूहा मतलब जैसे हम चतुर्व्यूह के बारे में वर्णन किया वो वैकुंठ लोकों में स्थित है, और वही कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हुए पुरुषावतार के रूप में धारण करते हैं, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे पुरुषा। उसके बाद अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब हर जगह भौतिक जगत में हर जगह विस्तार कर रहे सर्वव्यापी तत्व है। उसके बाद अंत में भगवान का एक विशेष विस्तार है, उसका नाम है अर्च विग्रह। जैसे आप श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर में या जो मंदिर में राधा रास बिहारी गोपीनाथ, कहीं भी आप वृंदावन में राधा श्याम सुंदर, मायापुर में राधा माधव, कहीं भी जाएंगे ये सब भगवान के अवतार है। ऐसा नहीं कि अर्च विग्रह, टेक्निकली अगर बोला जाए इनको बोला जाता है अर्च अवतार। जिस प्रकार 5000 साल पहले कृष्ण अपने आप प्रकट हुए और लीलाएं कर रहे थे, तो वो जो कृष्ण का जो स्वरूप 5000 साल पहले उनके लीलाएं करने वाले जो कृष्ण है उनमें, और अभी जो थोड़ा सा 100 मीटर दूर में जाके राधा गिरिधारी जो है खड़े हैं उनमें अस्तित्व में कोई अंतर यही नहीं, देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दोनों परम सत्य है। ये सोचना कि अरे हमारा बहुत दुर्भाग्य है 5000 साल पहले आते तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता, नो इट इज नॉट लाइक दैट। जितना लाभ आपको इधर भगवान के सामने दर्शन करने को जितना लाभ प्राप्त हो रहा है उतना ही लाभ उन लोगों को प्राप्त हुआ जब स्वयं कृष्ण आए थे। देयर इज ओनली डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। अर्च अवतार, इट इज ऑल्सो एन इनकार्नेशन, एवरी डेइटी एस्टैब्लिश्ड इन द टेम्पल इज एन इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, वो भी एक अवतार है, वो भी नहीं वही एक अवतार है। सो ये ऑल दीज आर एटर्नल डेइटीज, इनको प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे पुरुषोत्तम जैसे जगन्नाथपुरी में जाएंगे उधर नित्य रूप में पुरुषोत्तम के रूप में भगवान का पूजा करी हो रहा है। अगर आप मनुष्य लोग नहीं करते देवता लोग करते हैं जगन्नाथपुरी, मथुरा में केशव मूर्ति का नित्य रूप में अर्च विग्रह पूजा होता है, Mayapurve, Krishna is worshipped as Hari in the archa form. So archa form is a very important form. Sara jitna bhi pancharati granth hai, ye archa vigraha ke roop mein aadharit hai. To ye nitya roop mein archa vigraha ya krishna ke aur ek vistar hai, special vistar hai. Lekin uske sath sath mein dwarka puri, kyunki dwarka mein bhagwan ek raja ke roop mein the aur raja ke roop mein hone ke nate unko protection chahiye, dwarka ka protectors chahiye. तो कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं इन रूपों में. वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह, ब्रह्म. इधर जो वराह है वो वराह अलग है, जो अवतार लिया हुआ वराह से अलग है, और वो नरसिंह, हयग्रीव, ये सब जो है कृष्ण पर्सनली सराउंड द्वारका एज हिज प्रोटेक्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी इन 9 प्लेसेस. ही एक्सपैंड्स इन 9 डिफरेंट फॉर्म्स. ये जो 9 रूप है भगवान के, ये खास करके कहाँ है, वो द्वारका के 9 दिशाओं में निवास करते हैं. और द्वारका क्योंकि कृष्ण का राज्य है, उनका कैपिटल है, तो इसलिए ये कैपिटल का स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए ये सब विस्तार भगवान अपने आप को करते हैं. तो अब हमें अभी तक बहुत सारे बातें चर्चा किया, लेकिन अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो तदेकात्म के रूप के अंतर्गत ये स्वाम शाते हैं. जैसे आप ये टेबल के एकदम ऊपर के भाग में जाएंगे, तदेकात्म रूपा उसके अंतर्गत 2 विभाजन है आपके, उसके तुरंत राइट साइड में आपको स्वांश यानी पर्सनल एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा. वह स्वांश का जो लाइन है वो नीचे आते हुए उधर 3 कैटेगरी आपने देखा होगा. हाँ, तो इधर आपको आते हैं अवतार. तो सबसे पहला डेफिनेशन होना चाहिए अवतार का. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवतार? अवतार का मतलब क्या है? अवतार भगवान के वो स्वरूप जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रकट होते हैं उनको अवतार बोला जाता है. दोज एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड विच कम डाउन और डिसेंड टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, अवतारति इति अवतारा. अवतार मतलब उतर के आना, नीचे उतरना. जैसे पहले माले से नीचे के माले में जाना, ग्राउंड फ्लोर में जाना, तो उसको अवतारिति, अरे अवतार भी यानी ऊपर से नीचे उतरे. तो भगवान के अनंत विस्तार है आध्यात्मिक जगत में, भगवान के आध्यात्मिक जगत में अनंत विस्तारों में कुछ विस्तार है, कुछ फॉर्म्स है, कुछ रूप है, वो भौतिक जगत में आते हैं. दे कम डाउन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो वो जो भगवान के स्वरूप जो भौतिक जगत में आते हैं उनको अवतार बोला जाता है. वैसा नहीं कि बस भगवान के वो 10 अवतार है उतना ही, बस 10 हो गया. क्या भगवान के 10 ही अवतार है क्या? नो, देयर आर अनलिमिटेड एक्सपेंशंस ऑफ द लॉर्ड, अनलिमिटेड अनंत रूप. तभी जब प्रश्न होता है कि अरे भगवान कृष्ण है, ये सब रूप रूप क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करने क्या आवश्यकता है, क्यों करते क्या है, और कुछ काम धंधा नहीं क्या भगवान को इतने सारे रूपों में विस्तार करना और इतना हमको कंफ्यूज करके बैठ जाना? तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवान इतने अनंत रूपों को क्यों लेते हैं? व्हाई ही मैनिफेस्ट? क्योंकि भगवान अनंत है, अनंत होने के नाते उनके अनंत भक्त है, और अनंत भक्त होने के नाते अनंत प्रकार के उनके अनंत भक्तों के साथ संबंध है. तो उन अनंत संबंधों को पोषण करने के लिए उनको अनंत रूप धारण करना पड़ेगा. जैसे एक व्यक्ति है, वो हाई कोर्ट का जज है. जब वो हाई कोर्ट का जजमेंट जब देते हैं उस समय उनका एक स्वरूप रहता है. जब बैठे हैं बहुत गंभीर रहते हैं, सबको दंड देते हैं, सबका बात सुनते हैं. जब वही व्यक्ति जब घर में आता है उनके पत्नी के सामने वो हाई कोर्ट जज के रूप में काम नहीं कर सकता, उनका अलग स्वरूप होगा. हाँ, उनका नाम भी अलग होगा. उस समय पत्नी जो है वो हाई कोर्ट जज में, हाई कोर्ट के जो क्लर्क है वो जिस तरीके से योर ऑनर ऐसा चर्चा संबोधित करते हैं, क्या पत्नी उनको योर ऑनर करके संबोधित करेगी? नहीं, वो भी उधर स्वरूप अलग है, क्योंकि उनका अलग अलग लोगों के साथ संबंध के अनुसार, उस संबंध से उत्पन्न हुआ आनंद के अनुसार, उनका अलग अलग भावना के अनुसार अलग रूप होगा. सो कृष्णा मैनिफेस्ट डिफरेंट फॉर्म्स बिकॉज इट्स गॉट डिफरेंट डिवोटीज. अनंत इतने सारे भक्त लोग, इतने सारे जीव है, हर एक जीव के साथ भगवान का एक विशेष संबंध है. एवरी लिविंग एंटिटी हैज गॉट ए स्पेशल एंड ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद कृष्णा. हर एक जीव, एवरी लिविंग एंटिटी, ऐसा नहीं कि बस एक चींटी से लेके आदि तक, मनुष्य तक, ब्रह्मा से लेके इंद्र चंद्र, सब लोग भगवान के साथ एक विशेष संबंध है. Everybody is special in the eyes of Krishna. भले ही हमारे आंखों के लिए कृष्ण जो है वो खास दिखाई नहीं पड़ सकते, ठीक है कृष्ण है, हाँ, लेकिन बट फ्रॉम कृष्णस पॉइंट ऑफ व्यू यू आर वेरी स्पेशल फॉर हिम बिकॉज ही हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ यू. जो संबंध जो कृष्ण के प्रति मेरा जो संबंध है वो आपका जो संबंध है कृष्ण के प्रति कोई अलग है. आपका जो पति या पत्नी का जो कृष्ण से संबंध है वो कुछ अलग है. इट इज अ यूनिक थिंग, ओनली कृष्णा नोज वो क्या है. तो इसके लिए क्यों भगवान अलग अलग रूपों को विस्तार करते हैं, अलग अलग ही टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स फॉर रेसिप्रोकेटिंग विद हिज डिफरेंट डिवोटीज, दैट्स ऑल. तो ये स्वाम्स के अंतर्गत ये अवतार आते हैं. तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को वर्णन करते हैं. अभी अवतारों के बारे में सुनो, ये अवतार कितने प्रकार के हैं, कितने कैटेगरीज के हैं, कितने विभाजन है उसमें, छह विभाजन है. There are six categories of avatars. सबसे पहला है पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, गुणा अवतार और अंत में शक्ति आवेश अवतार. शक्ति आवेश अवतार ये सब उधर लिखा हुआ है. तो ये छह कैटेगरीज में सबसे पहला चर्चा करेंगे पुरुष अवतार के बारे में. तो ये पुरुष अवतार के बारे में चर्चा करने से पहले हमको ये जानना चाहिए, जब भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं या अवतरित होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है. There is a reason, there is a purpose for his incarnation. So every incarnation has a purpose. हर एक अवतार का एक कारण होता है. तो सबसे पहला हम एक एक अवतार का कारण चर्चा करेंगे, बाद में अवतारों का डिटेल भी जाएंगे. पुरुष अवतार का कारण है या पर्पस ऑफ कृष्णा एक्सेप्टिंग पुरुष अवतार इज फॉर क्रिएशन, सृष्टि का सृष्टि करने के लिए वो भगवान जो है अपने आप को पुरुष अवतार का विस्तार करते हैं, अवतार लेते हैं. मनवंतर अवतार क्यों लेते हैं, मनु को इस संसार को पालन करने के लिए सहायता करने के लिए मनवंतर अवतार लेते हैं. और लीला अवतार क्यों लेते हैं, भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करके इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए लीला अवतार लेते हैं. टू अट्रैक्ट द कंडीशन्ड सोल्स ही परफॉर्म ही टेक ही मैनिफेस्ट डिफरेंट लीला अवतार्स. युगावतार क्यों, अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म है, उस युग धर्म को प्रचार करने के लिए भगवान जो है युगावतार ग्रहण करते हैं. तो गुणावतार क्यों ग्रहण करते हैं, ये तीन गुण है, ये सारा संसार में प्रकृति जो है वो तीन गुणों से युक्त है, सत्व रजस तम. ये तीन गुणों को नियंत्रण करने के लिए भगवान जो है गुणावतार को स्वीकार करते हैं. और शक्तावेश अवतार एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए एक विशेष जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं. खैर इन पर्पस को हम जब एक एक अवतार का विस्तार रूप में चर्चा करेंगे फिर से चर्चा करेंगे फिर से, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो छह प्रकार के भगवान के अवतार है इन छह प्रकार के अवतारों को लेने का भगवान का एक विशेष उद्देश्य है. इस बात को बताने के लिए हमने सब अवतारों का कारण को बताया. तो सबसे पहला विल टॉक अबाउट पुरुष अवतार. जैसे हमने पहले बताया कि पुरुष अवतार लेने का सबसे पहला कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर कृष्णा एक्सेप्टिंग पुरुष अवतार, क्रिएशन सृष्टि. तो हमने अभी तक चर्चा किया आध्यात्म जगत में भगवान वैकुंठ लोक में संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव सब लोग है, पहला चित्रव्यूह, दूसरा चित्रव्यूह, तीसरा ऐसा अनंत चित्रव्यूह है. ये अनंत चित्रव्यूह में जो आखिरी जो चित्रव्यूह है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, ये आखिरी चित्रव्यूह का जो संकर्षण है वो अपने आप को विस्तार करते महासंकर्षण के रूप में, और ये महासंकर्षण अपने आप को अवतरित करते महाविष्णु के रूप में या कारण उदक शय विष्णु के रूप में. जैसे आप पुरुष अवतार के अंतर्गत आपने देखा होगा तीन विष्णु का नाम लिखा है, एक है कारण उदक शय विष्णु, गर्भ उदक शय विष्णु, क्षीर उदक शय विष्णु. तो ये तीन विष्णु है. सबसे पहला विष्णु का नाम क्या है, कारण उदक शय. उदक मतलब सागर यानी पानी, शय मतलब सोए हुए. वो विष्णु जो कारण सागर में सोए हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, कारणोदाक्षय विष्णु. वो विष्णु जो गर्भ सागर में सोए हुए उनको क्या बोलते हैं, गर्भोदाक्ष विष्णु। वो विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए उनका नाम क्या है, क्षीरोदाक्ष विष्णु। तो ये तीन विष्णु है, दे आर थ्री विष्णु। तो सबसे पहला संकर्षण अपने आप को विस्तार करते हैं महासंकर्षण के रूप में। महासंकर्षण अवतरित होते किस रूप में, कारण उदक शयी या कारणोदाक्ष विष्णु के रूप में। सो महासंकर्षण जो है विस्तार है और कारणोदाक्ष विष्णु कौन है, वो अवतार। विस्तार में अवतार में अंतर क्या है, अनेकों विस्तार में अनेक रूपों में कुछ रूप इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अवतरति मीन्स वन हू डिसेंड्स। हाँ, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, भगवान के अनंत रूप है वैकुंठ लोक में या आध्यात्मिक जगत में, उन अनंत रूपों में कुछ रूप मात्र इस संसार में प्रकट होते हैं। ये जो कुछ रूप है उनको क्या बोला जाता है, अवतार बोला जाता है, दे आर कॉल्ड अवतार्स। तो सबसे पहला है कारणोदाक्ष विष्णु। कारणोदाक्ष विष्णु कारण सागर में लेटे हुए और क्या कर रहे, वो दूर में ये पूरा भौतिक आध्यात्मिक परम व्योम में क्या हो रहा है, एक जगह, एक काला सा जगह है, उस जगह को बोला जाता है प्रकृति या भौतिक प्रकृति है, प्रदान है। जब उस सृष्टि करने का इच्छा होता है कृष्ण में तो कारणोदाक्ष विष्णु क्या करते हैं, उस प्रदान, उस भौतिक प्रकृति की ओर वो थोड़ा सा नजर डालते हैं। ही जस्ट लुक्स एट इट, ग्लांसेस। जैसे उपनिषदों में बोला गया कि साइक्षता ही सॉ, जैसे कारणोदाक्ष विष्णु भौतिक प्रकृति को एक बार ग्लांस करते, नजर करते, क्या होगा, उनकी आंखों से, दो आंखों से दो रेस निकलते हैं। एक है, एक रेस में से जीव शक्ति, दूसरा में से काल शक्ति। ये जीव शक्ति और काल शक्ति जब एक साथ मिल जाता है, एक साथ मिलके वो शंभु के रूप में परिवर्तित होके वो भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क में आता है, तब वो भौतिक प्रकृति क्या करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कारणोदाक्ष विष्णु के, यह कारणार्ण वजले भजते स्मयोगा निद्रा अनंत जगदंद कोटि गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं किस प्रकार ये कारणार्थ में चले, ये कारण सागर में वो शयन करते हुए क्या कर रहे, वो उनके रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे। जैसे वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो सारे जितने रोम कूप है उनमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहा। ब्रह्मांड अंड मतलब अंड के रूप में है ब्रह्मांड, या हम जो जिस जगत में निवास कर रहे हैं वो अंड के रूप में। इसलिए कारणोदाक्ष विष्णु के रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे, सृष्टि हो रहे। और जब सांस वापस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, वो सारे ब्रह्मांड जो है उनके रोम कूप के अंदर वापस चले जाता है। तो इस प्रकार कारणोदाक्ष विष्णु सबसे पहला सृष्टि करते, ही क्रिएट्स। ये सारे जितने ब्रह्मांड का सृष्टि होने के बाद कारणोदाक्ष विष्णु क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार करते गर्भोदाक्ष विष्णु के रूप में। तो हर एक ब्रह्मांड के रूप के अंदर ये कारणोदाक्ष विष्णु क्या करते हैं, विस्तार करते हुए अपने आप को गर्भोदाक्ष विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो सबसे पहला कारणोदाक्ष विष्णु के अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत प्रवेश करते कारणोदाक्ष विष्णु गर्भोदाक्ष विष्णु के रूप में। और जैसे गर्भोदाक्ष विष्णु वो ब्रह्मांड के अंतर्गत जाते हैं तो देखा ब्रह्मांड के अंदर सब खाली है, तो अपना शरीर से कुछ पसीना निकलते हैं, निकाल के आधा ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर फिर वापस वो शयन करते हैं। तो इसलिए उनका नाम है गर्भ, गर्भ मतलब अंदर है, एक अंडे ब्रह्मांड के अंदर है, इसलिए उनको गर्भ बोला, गर्भ उदक शयी। तो जैसे गर्भोदाक्ष विष्णु लेटे हुए तो उनका जो नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, ये नाभि का उत्पन्न हुआ जो कमल है, कमल के ऊपर कौन है, ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। तो ब्रह्मा जी का जो सृष्टि किसने किया, गर्भोदाक्ष विष्णु करते हैं। और कारणोदाक्ष विष्णु कौन है, सारे ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करते हैं, आप उनको क्रिएशन करते हैं। और ये ब्रह्मा जी गर्भोदाक्ष विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जो हम लोग पिक्चर में देखते हैं या कोई फोटो पेंटिंग में, जिसके भगवान लेटे हुए और उनके नाभि से जो कमल उत्पन्न हो रहा है, वो विष्णु कौन है, वो गर्भोदाक्ष विष्णु है। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं विष्णु विष्णु, लेकिन विष्णु कौन, किस प्रकार के विष्णु है, तीन विष्णु हो तो कम से कम जानना चाहिए हमको। तो ही इज द गर्भोदाक्ष विष्णु हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर वापस वो सृष्टि करते हैं। ये जो भगवान के गर्भदाक्ष विष्णु से कमल से उत्पन्न हुआ जो नाल है उनके अंतर्गत 14 भुवनों को निर्माण करते हैं। सब कुछ सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी परेशान है। क्यों परेशान है? सब सृष्टि है, वायु को सृष्टि किया, अग्नि को सृष्टि किया, जल को सृष्टि किया, उन्होंने सब निर्माण किया। करने के बाद वायु है लेकिन बह नहीं रहा है, अग्नि है लेकिन जल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तब भगवान क्या करते हैं, गर्भोदाक्ष विष्णु अपने आप को विस्तार करते क्षीरोदाक्ष विष्णु के रूप में। एक क्षीरोदाक्ष विष्णु कोई और नहीं, वो परमात्मा है, ही इज द परमात्मा। तो सब अणु में प्रवेश करते हुए, सबके हृदय में प्रवेश करते हुए क्षीरोदाक्ष विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का सृष्टि को कार्यान्वित करते, ही मेक्स द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा स्टार्ट्स फंक्शनिंग। जब तक क्षीरोदाक्ष विष्णु सब ब्रह्मांड के हर एक कण में प्रवेश नहीं करते, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, जब तक ये कार्य नहीं करते विष्णु, तब तक वो कार्यान्वित नहीं होता है, सृष्टि संचलन उनका संचलन नहीं होता है। तो ये है संक्षिप्त रूप में कारणोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु, क्षीरोदाक्ष विष्णु के रूप में। जो हम लोग परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, कृष्ण जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। जैसे भगवान भविता में सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। वो परमात्मा है कौन? हु इज दैट परमात्मा? एक क्षीरोदाक्ष विष्णु परमात्मा है, ही इज द परमात्मा। कुछ लोग बोलते हैं, अधिकांश लोग खास करके दक्षिण भारत में इस प्रकार की पिता है, क्या बोलते हैं कि सभी अवतार विष्णु के अवतार है, सभी लोग विष्णु के अवतार है। विष्णु एक जगह है, वो राम के रूप में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। विष्णु कभी नरसिंह रूप में आते हैं फिर वापस विष्णु बन जाते हैं। कभी जो वो वामना नरसिम्हा या कभी कृष्ण के रूप में आते हैं फिर विष्णु बन जाते हैं। तो उनको केवल विष्णु दिखाई पड़ते हैं। तो वो लोग एक तरीके से सही है, लेकिन साथ साथ में असली तरीके से देखा जाए वो गलत है। क्यों? सारे जितने भी अवतार है भागवतम के अनुसार कौन है, अवतारों का स्रोत कृष्ण है, लेकिन विष्णु करके क्यों बोलते हैं? वाई डू दे से? क्योंकि ये जो क्षीरोदाक्ष विष्णु है, जो परमात्मा के रूप में हम जानते हैं, ये क्षीरोदाक्ष विष्णु कौन है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक दरवाजे के रूप में है। हाँ, ही इज द डोर, ही इज द गेटवे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर कोई भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में होना चाहता है तो वो क्षीरोदाक्ष विष्णु की ओर से जाना पड़ेगा। जो कोई आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है तो भी उसको क्षीरोदाक्ष विष्णु के द्वारा आना पड़ेगा। इसलिए जब कृष्ण को भी आना है इस भौतिक जगत में, ये जो क्षीरोदाक्ष के विष्णु के द्वारा ही आते हैं। तो इसलिए जब भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे ऐसा लगता है कि ये क्षीरोदाक्ष विष्णु यानी वो परमात्मा जो है, विष्णु जो है वो कृष्ण के रूप में आ रहे फिर वापस जा रहे, राम के रूप में आ रहे वापस जा रहे, तो इस प्रकार ऐसा लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से देखेंगे ये सारे जितने भी अवतार है वो नित्य रूप में आध्यात्मिक जगत में देयर ऑल मैनिफेस्टेड, देयर ऑल स्थित, दे सब लोग वो स्थित है। तो ये कारणोदाक्ष विष्णु जो है वो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, गर्भोदाक्ष विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, और क्षीरोदाक्ष विष्णु जो है वो प्रत्येक आत्मा का परमात्मा है। ही इज अ सोल फॉर एवरी सोल, क्योंकि सबके सबके हृदय में वो निवास करते हैं क्षीरोदाक्ष विष्णु के रूप में। तो ये है संक्षिप्त रूप में सनातन गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषावतारों के बारे में वर्णन करते हैं। पुरुषावतारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सृष्टि करना, सृष्टि के संबंधित कार्यकलापों का देखभाल करना, और ये तीन है पुरुषावतार, गर्भ कारणोदाक्ष विष्णु या उनका दूसरा नाम है महाविष्णु, और गर्भोदाक्ष विष्णु, कारणोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु और क्षीरोदाक्ष विष्णु। और तीनों के साथ में लक्ष्मी जी रह निवास करती है, और लक्ष्मी जी उनका चरण का सेवा करती रहती है, और तीनों जो है अनंत रात के ऊपर ही लेटे रहते हैं। नेक्स्ट है वी विल डिस्कस अबाउट मनवंतर अवतार। भगवान अपने आप को मनवंतर अवतार के रूप में विस्तार करते हैं। मनु कौन है? मनु मनुष्यों के इंचार्ज है, ही इज द इंचार्ज और द किंग ऑफ द मैनकाइंड, मनुष्य के राजा, इसलिए उनका नाम है मनु। मनुष्य, हमको मनुष्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम मनु के, मनु हमारा राजा है, ही इज द किंग। इसके लिए हमको थोड़ा सा वैदिक टाइम साइंस के बारे में जानना जरूरी है, यानी वेदों का जो हिसाब से समय का विभाजन कैसा है। हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि कलयुग जिस युग में हम निवास कर रहे हैं वो 432,000 वर्ष का है। आप सबको मालूम है 60 सेकंड होगा तो एक मिनट होता है, वैसे 60 मिनट होगा तो एक घंटा होगा, और 12 घंटा एक दिन, 24 घंटा एक दिन और रात, वैसा 24 घंटा 30 दिन होता है तो एक महीना होता है, वैसा 12 महीना करेगा तो एक साल होता है, वैसा 432,000 वर्ष बीतता है, 432,000 वर्ष बीतता है तो एक कलयुग होता है। तो इसका दुगुना करेंगे यानी 866,000 वर्ष होता है तो एक द्वापर युग होता है। तो ऐसा इसका कलयुग का 3 गुना करेंगे यानी 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 ईयर्स, वो एक क्या होता है, एक त्रेता युग होता है। और कलयुग का 4 गुना करेंगे यानी 17,28,000 वर्ष, ये कितना होता है, एक सतयुग होता है। तो वैसे ये चारों युगों का जो संख्या है बताएं, मिलाएंगे तो कितना होता है, 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 वर्ष जब होता है तब सत्य त्रेता द्वापर कलि इसका एक चक्कर खत्म होता है। इसको बोलते हैं दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब चारों युगों का एक चक्र। तो वैसे चारों युगों का 1,000 चक्र समाप्त होता है, when the cycle goes for 1,000 times, उसको बोलते हैं एक कल्पा, one कल्पा is 1,000 cycles of दिव्य युगास, 1,000 बार इस चक्र होता है, उसको एक कल्प बोला जाता है। एक कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर, एक दिन मतलब 12 घंटा, तो उतना ही लंबा अवधि का ब्रह्मा जी का जो रात भी है। तो वैसे ब्रह्मा जी जो है वो उनका एक दिन इतना समय है, तो वैसे वो 100 साल ब्रह्मा जी का आयु होता है, और 100 साल का ब्रह्मा जी का आयु मतलब एक ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी 100 साल तक संभालते हैं। उसके बाद 100 साल जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है तब ब्रह्मांड जो है विष्णु के फिर रोमकूप के अंतर्गत चला जाता है, यानी विष्णु का एक सांस, एक बार सांस छोड़ा, उन्होंने सांस लिया, इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी का 100 साल निकल गया। ब्रह्मा जी का 100 साल मतलब देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा मतलब कितना हुआ हमारा, 43,20,000 वर्ष को 1,000 गुना करेंगे, ब्रह्मा जी का 12 घंटा हुआ। तो वैसा ब्रह्मा जी 100 साल का जीवन जो है विष्णु का एक सांस के बराबर, और विष्णु का जो एक सांस है कृष्ण का एक पलक के बराबर। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटा में ये 14 मनु प्रकट होते हैं, देयर आर 14 मनुस इन 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने दिव्य युग है, 1,000 दिव्य युग है। दिव्य युग मतलब क्या है, 4 युगों का एक चक्र। जब 4 युगों का एक चक्र होता है उसको दिव्युग बोलते हैं। तो वैसे 1,000 दिव्युग होता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, और 12 घंटा में कितना, ब्रह्मा जी का 12 घंटा में कितने मनु है, 14 है। तो 14 मनु के अंतर्गत 1,000 दिव्युग है, 1,000 युग चक्र है। तो एक एक मनु को कितना युग चक्र मिलता है, 71 या 72, 1,000 divided by 14। तो एक एक मनु जो है 71 या 72 दिव्य युगों यानी चतुर्युगों तक वो निवास करते हैं। तो जब मनु इस मनुष्यों को पालन कर रहे हैं तो क्या होता है कि कभी ना कभी असुर लोग आके कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, उस समय भगवान जो है वो अपने आप को विस्तार करते हैं, ही एक्सपेंड्स इनटू, ये अवतरित होते मन मंत्र अवतार के रूप में। लेकिन अभी जो है वैवस्वत मनु, सातवा मनु का रेजिम चल रहा है, यानी देखिए अभी मनवंतर अवतार की लिस्ट में आपने स्वयं मनु, स्वारोचता, उत्तमा, तामसा, रैवता, चक्षुषा, और सातवा का नाम क्या है, वैवस्वता उधर लिखा होगा। और वैवस्वत मनु के अंतर्गत अभी मनवंतर अवतार के अंतर्गत या वैवस्वत मनु के अंतर्गत अवतार का नाम क्या है, वामन। आपके जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये मनु का नाम है, यानी मनु जो राजा है उनका नाम है। लेकिन राइट साइड में जो है उस मनवंतर अवतार के अंतर्गत, उस मनु के अंतर्गत जो अवतार का नाम लिखा है, स्वयंभू के अंतर्गत यज्ञ, बाद में ये यज्ञ विभू सत्यसेना, हरि, वैकुंठा, अजिता, वामना, ये भगवान के अलग अलग अवतार हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम इस बार ऐसा हुआ, इस वनों के अंतर्गत बलि महाराज इतना भयंकर युद्ध किए थे, युद्ध करके राक्षसों को, असुरों को वध करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। हाँ, करते करते उन्होंने एक दो ऐसा करते करते उन्होंने 99 यज्ञ कर दिए थे। अभी बस और एक यज्ञ करेंगे, वो इंद्र बन जाएंगे, तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर बीच में मनु के अंतर्गत ही मनु का पूरा रेजिम खत्म नहीं हुआ, 71 युग चक्र खत्म नहीं हुआ, उसी के अंतर्गत अगर कोई और यज्ञ कर देता है, कोई इंद्र बन जाते, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए भगवान को वामन के रूप में आना पड़ा। तो वामन के रूप में आकर उन्होंने क्या किया, उनको इस बलि महाराज को बोला, आप शांति से इधर बैठो, उधर सुतल लोक में अगली बार बन जाना, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इसलिए इस बार का जो मनु है, वैवस्वत मनु है, उनकी राज्य को संभालने के लिए उन्होंने आके मदद किया। तो ये मनमंत्र अवतार है। अब देखिए, ये 14 मनु ब्रह्मा जी का एक दिन में आते हैं। तो वैसे ही अगर ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो एक महीने में कितने मनु आते हैं? हाउ मेनी मनुज आर देयर इन वन मंथ? कितना है? 420 मनु आते हैं। तो वैसे ही आप ब्रह्मा जी का एक साल में कितने आते हैं? 5040 आते हैं। 5040 मनुज अवतार्स इन ब्रह्मास वन ईयर। और ब्रह्मा जी का 100 साल में 5040 को 100 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है? इतने अवतार। तो ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मा जी का जो आयुष्य 100 साल के अंदर क्या हो रहा है, महाविष्णु का, या केवल सांस लेना और सांस छोड़ना। एक बार सांस बाहर छोड़ के सांस लेने के अंतर्गत इतने सारे मनमंत्र आ जाते हैं, तो ये तो अद्भुत चीज है। तो असल में भगवान को हम जानते हैं कि महान है, और ये कार्यकलाप अद्भुत है। वो कितना अद्भुत है, कितना महान है, हमको तभी मालूम पड़ेगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो तब हमको मालूम पड़ता है कि असल में हम कितने क्षुद्र हैं, वी हाउ स्लो वी आर, एंड हाउ ग्रेट इज आवर कृष्णा। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रेम करता है, तो उसके हरेक कार्यकलापों को, हरेक डिटेल को इतना सूक्ष्म तरीके से जानना चाहता है। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, वो कौन सा रंग पसंद है, कब क्या पहनता है, हर चीज, हर डिटेल के बारे में वो व्यक्ति जानना चाहता है। तो वैसे अगर हम कृष्ण भक्त हैं, तो कृष्ण से अगर प्रेम है, तो कृष्ण के हरेक डिटेल, उनका अद्भुत का, उनका मधुरिमा, सब कुछ पता करना हम चाहिए। और पता करेंगे, उनके प्रति व्रति और प्रेम और बढ़ता है, उनके प्रति सेवा करने की भावना और बढ़ता है, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के जो डिटेल्स है, भले ऐसे रखते तरह सब वो बहुत दिमाग के लिए बहुत तकलीफ का काम है, लेकिन फिर भी ये सब अध्ययन करने से क्या होगा, हमको बहुत भक्ति में प्रगति के लिए बहुत बहुत आनंद कर चीज है। इट इज वेरी नाइस टू लर्न। ठहरी हो, अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु जो है वो सातवा मनु है। अभी सातवा मनु के अंतर्गत अभी जो समय चल रहा है, जैसे एक एक मनु के लिए कितना युग चक्र मिलता है? 71 युग साइकल्स मिलता है। वो युग चक्र 71 में, 71 युग चक्र में अभी कौन सा चल रहा है? 28वा युग चक्र चल रहा है। 28 साइकिल, 28 युग चक्र में अभी तक जो है, अभी उस युग चक्र का जो कलयुग है वो भी चल रहा है। इसलिए जो पारंपरिक तरीके से जो ब्राह्मण लोग करते हैं, संध्या वंदन करते हैं या यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ करने से पहले उनको संकल्प लेना पड़ता है। वो संकल्प लेने से पहले लेने के समय उनको ये वो जिस जगह बैठे हैं, कौन सा समय है, वो सब कुछ उनको बोलना पड़ता है। तो उस समय ये सब कुछ बोलते हैं कि भाई वस्तु मनमंत्रे अष्टविंशति का चक्र कलयुगे, कलयुग के अंतर्गत में अभी कौन से नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के दक्षिण तीर में बैठा हूँ, ये समय में इधर बैठा हूँ, अभी मैं ये कार्य करने वाला हूँ, ये सब बोला जाता है। तो ये मनमंत्र अवतार के बारे में थोड़ा सा परिचय था। पर्पस ऑफ मनमंत्र अवतार क्या है? मनु को सहायता करना, टू हेल्प द मनु ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज रजीम। उसके बाद लीलावतार, भगवान के अनंत लीलावतार, देयर अनलिमिटेड लीलावतार्स। लीला मतलब पास टाइम्स, वहां के क्या करते हैं, लीला मतलब वो कार्य जो बहुत सरलता से किया जाता है। भगवान गोवर्धन उठाते तो आराम से उठाते, उनको कोई ऐसा बॉडी बिल्डिंग करके उठाने की जरूरत नहीं, उनको बस वेरी सिंपल वेरी हैप्पी, दैट इज कॉल्ड लीलावतार। और लीलावतार भगवान क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीलावतार, इस बात को कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है, बोलती है कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानायाम् अविद्या कामकर्मवि श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। बोलती है कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानायाम्, ये भौतिक संसार में सभी लोग एकदम ग्रस्त है, बहुत दुखी है, क्यों, अविद्या की वजह से। अविद्या की वजह से वो सोच रहे हैं कि काम कर्म भी, मेरे अंदर जितने भी इच्छाएं वो सब कामनाओं को मैं इतना मेहनत करके वो करके वो पहाड़ तोड़ के मैं इच्छाओं को पूरा करके सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो सब लोग दुखी है, अविद्या काम कर्म ही। तो क्या करते हैं, श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। हे भगवान, कुछ लोग बोलते हैं कि आप अवतार इसलिए लेते हो ताकि आप अवतार लेके अलग अलग प्रकार की लीलाओं को प्रकाशित करके इस संसार में लीलाओं का जो लीला कथा है उसको छोड़ के जाते हो, ताकि सभी लोग क्या कर सकते हैं, इन लीला कथाओं को श्रवण कीर्तन करते हुए आपके प्रति रति उत्पन्न करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। मान लीजिए भगवान अगर नहीं आते और लीलाएं नहीं करते, भागवत कहाँ होता, भागवत भगवे भगवान और भक्तों के बीच में लीलाएं हैं, अगर वो नहीं है तो हमको श्रवण कीर्तन कैसे कर सकते हैं, अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो हमको परिशुद्ध कैसे होंगे, भगवान के प्रति रति कैसे उत्पन्न होगा, भगवत धाम कैसे जाएंगे। तो कृष्णा होल पर्पस ऑफ पास्ट टाइम्स इज सो दैट इज दस द पास्ट टाइम्स, वो लीला करके वो लीला कथा को छोड़ के जाते हैं। तो ये बात लीला अवतार का मुख्य उद्देश्य है, ताकि लीला कथा करके उनको बद्ध जीवों को आकृष्ट करना। लीला हितेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम, टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय डूइंग दिस वंडरफुल सिंपल पास्ट टाइम्स। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते लीला हितेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम, जयति मतलब को जीतना, ही कॉन्कर्स द माइंड ऑफ द कंडीशन सोल्स, वो आकृष्ट कर लेते बद्ध जीव को, ताकि वो भौतिकता को भूल के उनकी उनके प्रति रुचि उत्पन्न कराए। मत्स्या कोरमा नरसिम्हा वामना ये सब लीला अवतार है। जैसे हम देखते हैं मनवंतर अवतार, इस समय के मनवंतर अवतार वामन है, और यही मनवंतर अवतार जो वामन है वो कभी लीला अवतार के अंतर्गत भी आ सकते हैं, मनवंतर अवतार भी आ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पुरुष अवतार के अंतर्गत जो क्षीरोदाक्ष विष्णु है वो पुरुष अवतार है, लेकिन साथ साथ में वो गुणावतार भी है, तो इसलिए हम गुणावतार के बारे में चर्चा करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द गुणावतार। ये गुणावतार कौन है, गुणावतार तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीन गुणों को देखभाल करना या उनको नियंत्रण करने वाले गुणावतार। जो सबसे पहला तीन गुणों में सत्वगुण, सत्वगुण को कौन नियंत्रण करते हैं, ब्रह्मा जी नियंत्रण करते हैं, ब्रह्मा। और रजोगुण को, सॉरी इधर थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक, इधर रजोगुण को नियंत्रण करते हैं ब्रह्मा जी, और सत्वगुण को नियंत्रण करते हैं विष्णु, और शिव जी जो है इग्नोरेंस के अंदर। तो आप अपने नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, पैशन को ऊपर डाल दीजिए, गुडनेस को नीचे डाल दीजिए, ऐसा कर दीजिए। सोच रहा हूँ ठीक करके, अलग प्रिंटआउट निकल गया। तो ब्रह्मा विष्णु और शिवा, जैसे हम देखते हैं सब लोग बोलते हैं अरे कि नहीं तीन लोग है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन उनको मालूम नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, वो दे आर द गुणावतार। ये तीन गुणों को नियंत्रण करने के लिए तीन अवतार है। तो आप बोल सकते हैं ब्रह्मा जी तो अवतार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी किस प्रकार के अवतार है, वो शक्ति आवेश अवतार है। ब्रह्मा जी अस्तित्व में जीव है, लेकिन उनके अंदर भगवान शक्ति देते ताकि सृष्टि करें, तो इसलिए ब्रह्मा जी शक्तावेश अवतार के अंदर भी आते हैं, गुणावतार के अंदर भी आते हैं। जो इधर गुणावतार में जो विष्णु है, वो विष्णु कौन विष्णु है, तीन विष्णुओं में क्षीरोदाक्ष विष्णु है, इसलिए ये क्षीरोदाक्ष विष्णु पुरुष अवतार भी है और गुणावतार भी है। तो क्षीरोदाक्ष विष्णु वो गुडनेस यानी विष्णु जी जो है वो सत्वगुण को नियंत्रण करते हैं। सत्वगुण के द्वारा क्या होता है, पालन होता है, रजोगुण के द्वारा सृष्टि होता है, और तमोगुण के द्वारा नाश होता है। कि सृष्टि करना बहुत आसान है, लेकिन सृष्टि करने के बाद उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। जैसे गाड़ी खरीदना बहुत आसान है, 5 लाख दिया गाड़ी खरीद लिया, लेकिन उसके बाद उसको ठीक करो, उसको खराब हो जाए ये करो, उसको मेंटेन करो, उसको साफ करो, ये सबसे झंझट करा। तो ये बहुत ही संसार को सृष्टि करने का कार्य ब्रह्मा जी रजोगुण को इस्तेमाल करके करते। इधर ये ध्यान में रखना चाहिए, ब्रह्मा जी रजोगुण को इस्तेमाल करके सृष्टि को सृष्टि करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं है। ब्रह्मा जी जो है वो बहुत सूक्ष्म सत्व गुण के द्वारा प्रभावित है, रजस और तमस है लेकिन बहुत कम मात्रा में, एकदम कम मात्रा में। और शिव जी वो भी इस संसार को संहार करते हैं, लेकिन कैसे संहार करते हैं, तमोगुण को इस्तेमाल करके संहार करते हैं। दे कंट्रोल द मोड ऑफ इग्नोरेंस। इधर ये ध्यान में रखना चाहिए ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं है, शिव जी तमोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं है। शिव जी और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रजस और तमो गुणों को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और साथ साथ में वो बहुत सत्व गुण के द्वारा और रजस और तमस बहुत कम मात्रा में उनके ऊपर प्रभावित जरूर है। गुणों के प्रभाव में है ब्रह्मा और शिव जी, लेकिन रजस और तमस गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स, बट द मोड ऑफ गुडनेस रजस एंड तमस इज इन ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, that they are the controllers of mode of passion and ignorance. लेकिन इधर विष्णु जो है वो सत्वगुण को नियंत्रण करते हैं, लेकिन वो कोई भी गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में ब्रह्मा जी और महेश यानी शिव जी ये दोनों गुणों के अंतर्गत है, लेकिन शिव जी विष्णु जो है वो गुणों के अंतर्गत नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, we should understand. विष्णु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स, वो गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है। ब्रह्मा और शिवा ये दोनों गुणों के द्वारा प्रभावित है, लेकिन रजस और तमस के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, सत्व गुण के द्वारा प्रभावित है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ गुडनेस, इसलिए दे आर द कंट्रोलर्स। तो शिव जी जो है वो संहार करते हैं। ये तो बोल सकते अरे शिव जी को संहार करने का कार्य क्यों दिया गया, क्योंकि ये इग्नोरेंस यानी तमोगुण उस व्यक्ति को दिया जाता है नियंत्रण करने के लिए, मारने का, पीटने का, दंड देने का, नाश करने का, जो बहुत जिम्मेदार है। द पावर जैसे ऑफ पनिशमेंट वो किसको दिया जाता है, पनिश करने का, एक बहुत ही इतना एक्सपीरियंस आने के बाद एक व्यक्ति को जज बनाया जाता है, जज को पनिशमेंट देने की पावर दिया जाता है। लेकिन साधारण सा हर व्यक्ति को जज दिया, जज बोल रहा है इसको बस जेल में डाल दो, इसको मारो, इसको हैंग कर दो, ही इज डूइंग दिस पनिशमेंट जॉब ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन वो किसको दिया जाता है, जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है उनको दिया जाता है। शिवजी को ये क्यों दिया गया, हाउ व्हाई इज ही गिवन द पावर ऑफ इग्नोरेंस, पावर टू डिस्ट्रॉय, ही इज गिवन बीइंग द कंट्रोल ऑफ इग्नोरेंस, he is being given the power to control ignorance because he is a very responsible person. वो देख रहे इतना सारा व्यवस्था है बद्ध जीवों को, व्यवस्था को इस्तेमाल करके भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इसको ख्याल ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा, इन सबको मैं छीन लिया जाए, इनको बहुत गुस्सा आता है और पूरा संसार को वो नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार विष्णु जो है गुडनेस के द्वारा वो सब पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के को सृष्टि करते हैं। अभी आता युगावतार, युगावतार चार है क्योंकि चार युग है, चार युगावतार है। पर्पस ऑफ युगावतार क्या है, ये चार युग धर्म है, चार युग है, चार युगों के लिए चार युग धर्म है। जैसे सबसे पहला युग है सत्ययुग, ये सत्ययुग का युग धर्म क्या है, कृतेय ध्यायतो विष्णु, अष्टांग योग जो है वो सत्ययुग का युग धर्म है। ऐसे बैठ के ध्यान करना, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये सबको पालन करना, ये जो है कौन सा युग का है, ये सत्ययुग का है। और त्रेता युग में जो युग धर्म है वो युग धर्म क्या है, वो यज्ञ का विधि करना, त्रेतायाम यजतो मकई ही, मकई मतलब यज्ञ। यहाँ अलग अलग प्रकार के यज्ञ को संपन्न करते हुए बड़े बड़े कार्य को संपन्न किया जाता, यज्ञ का किया जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम, ये द्वापर युग में कौन है, क्या किया जाता है, परिचर्यायाम यानी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, अर्च वगैरह स्थापना करना, उनको पूजा करना, ये है विधि। लेकिन कलह तक हरि कीर्तनार्थ। तो ये चार युगों के लिए चार युग धर्म है। ये चार युग धर्म को प्रचार करने के लिए भगवान एक अवतार लेते, चार अवतार लेते, उनका नाम क्या है? युग अवतार। पर्पस ऑफ युग अवतार इज टू प्रोपगेट द युग धर्म। तो सत्युग को प्रचार करने के लिए भगवान किस रूप में आए? वो सफेद रंग में आए। और त्रेता युग में यज्ञ का विधि को प्रचार करने के लिए लाल रंग में आए, और द्वापर में प्रचार करने के लिए वो काले रंग में आए, कलयुग में येलो कलर। तो ये कलयुग के अलग अलग युगों को वर्णन करते हुए जब भी इस युगावतार का वर्णन किए, कौन कर रहे? सनातन गोस्वामी किसको कर रहे? चैतन्य महाप्रभु किसको कर रहे? सनातन गोस्वामी बात को कर रहे। सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, युगावतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा ये कलयुग के युगावतार के बारे में जानना चाहता हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि युगावतार के बारे में अगर जानना चाहते हो, कोई भी अवतार के बारे में जानना चाहते हो, आपको शास्त्र के ऊपर आधारित होकर जानना होगा। हर एक अवतार का लक्षण होते हैं। इन शास्त्रों में अवतारों का लक्षण का वर्णन किया गया है। अवतारों का लक्षण दो प्रकार के हैं, एक है स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्थितोन्मयाद्विदश्चर्तेष्विघ्नेश्वराः तेने ब्रह्मरुदा यादगवे मुह्यन्ति सुरया तेजो वार्मिगन्यता विनमयो यत्र तिसर्गो अमृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तघातं कोकं सत्यं परं धीमहि। ये श्लोक को कोट करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण का दो लक्षण वर्णन किए गए हैं। सत्यम परम, ये जो है भगवान के स्वरूप लक्षण। और भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान किया और सृष्टि किया और नाना प्रकार के देवता लोग उनको विमोहित हो जाते हैं और ये भौतिक संसार से परे है। ये सब जो है भगवान के तटस्थ लक्षण है। लेकिन भगवान के जो स्वरूप और मुख्य लक्षण है वो है सत्यम परम। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे वर्णन करते हैं, सनातन गोस्वामी पद और पूछते हैं, थोड़ा मैं और जानना चाहता हूँ ये कलयुग का जो अवतार है उनके कार्यकलाप क्या होते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, आगे चर्चा करता हूँ। अभी गुणावतार के बाद गुणावतार हो गया, आगे चर्चा करता हूँ, अभी आप शक्तावश अवतार के बारे में सुनो, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हो युगावतार है और सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो शक्तावेश अवतार के बारे में सुनो। ये जैसे हमने पहले बताया था तीन रूप है, एक है स्वयं रूपा, तदेकात्म रूपा, आवेश रूपा। ये आवेश रूप है, ये शक्तावेश अवतार और आवेश रूप दोनों एक ही है। तो अभी लास्ट कैटेगरी में आए, तो ये आवेश रूप आवेश अवतार ये दो प्रकार के हैं। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। एक है मुख्य, दूसरा है गौण। ये मुख्य जो है वो दो है भगवान के डायरेक्ट, वो कौन है? शेषा और अनंता। ये दोनों भगवान के, भगवान स्वयं है, ये जीव नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं अपने आप को एक रूप में उनका शक्ति को आवेशित करते हैं। दूसरे है सारे जीव है, जैसे नारदा, कुमारा, पृतु, परशुरामा, ये सब जो है कौन है? ये जीव है, उनके अंदर भगवान एक शक्ति को आवेशित करते हैं एक विशेष कार्य संपन्न करने के लिए। जैसे ये शेषनाग और अनंत, ये शेषनाग भगवान के डायरेक्ट शक्तावेश अवतार है, मुख्य शक्तावेश अवतार है, जो कौन सा शक्ति को प्रदान करते हैं? भूधारण शक्ति। ये सारे जितने भी भूमंडल है वो सब शेषनाग के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार सांप के अंदर एक ज्वेल्स है, इनके मुख में हजारों मुखों में एक मणि या उनके एक माला अगर डाला जाए, उसी प्रकार ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को शेषनाग धारण करके रखते हैं। इसलिए भूधारण शक्ति के द्वारा शेषनाग आवेशित है। और अनंत देव कौन, किस शक्ति के द्वारा आवेशित है? कृष्ण गुण वर्णन शक्ति, भगवान के गुणों को वर्णन करने की जो शक्ति है वो अनंत नाग के अंदर उन्होंने आवेशित किया। इसलिए अनंत देव उन अनंत भगवान का अनंत गुणों को अनंत काल से वर्णन करते आ रहे हैं। तो दिस इज अनंत देव। और कुमार, ये जो कुमार, चार कुमार है, सनक, सनातन, सनंद, कुमार है, चार कुमार, उनके अंदर भगवान क्या करते हैं? ज्ञान शक्ति उनके अंदर आवेशित करते हैं। नारद के अंदर भक्ति शक्ति, पृथु महाराज के अंदर भू पालन शक्ति, क्योंकि पृथु महाराज ने किस प्रकार पृथ्वी को पालन वगैरह किए। और परशुराम के अंदर दुष्ट संहारण शक्ति, इस प्रकार अलग अलग लोगों के ब्रह्मा के अंदर उन्होंने सृष्टि करने की जो शक्ति है उन्होंने प्रदान किया, और नरनारायण ऋषि में उन्होंने तपशक्ति का उनको आवेशित किया। तो वैसे व्यास देव के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, साहित्य शक्ति के द्वारा व्यास देव आवेशित किया गया था। तो ये वर्णन करने के बाद अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं शक्तावेश अवतार को, समराइज करते हैं, बोलते हैं कि मैं कितना वर्णन करूं ये शक्तावेश अवतार का गुणों का, एक बात ध्यान में रखो, इस संसार में तुम कुछ भी देखते हो, महान चीज देखते हो, ये समझ लेना कि भगवान की शक्ति के बिना वो हो ही नहीं सकता। तो उन सबको विभूति बोला गया है, इससे भगवद्गीता में भगवान जो 11वें अध्याय में अलग अलग विभूतियों को वर्णन करते हुए आखिरी में श्लोक में बताते हैं कि यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव तत्तत्तेवाभिगच्छत्त्वं मम तेजोंश संभवम्। इस श्लोक को कोट करते हुए सनातन गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि यह है भगवान का महिमा। जो व्यक्ति भगवान का महिमा जान लेता है, इन चर्चा को पढ़ लेता है, उनको जरूर कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होता है। और आगे सुनो, मैंने भगवान के अलग अलग स्वरूपों को तो वर्णन किया, लेकिन उनका ऑपुलेंस को सुनो, यू लर्न अबाउट द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को टीचर्स ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण, बाद में कृष्ण का मधुरता का वर्णन, रूप का सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उसके बाद भक्ति के तत्वों के बारे में वर्णन करते हैं, और अंत में आत्माराम वर्ष के ऊपर व्याख्या करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी शिक्षा को समाप्त करते हैं। हम इधर समाप्त करेंगे, कल थोड़ा सा 10-15 मिनट में थोड़ा सा संक्षिप्त में स्वीटनेस और ऑपुलेंस थोड़ा सा चर्चा करके, और आगे वाला जो चर्चा है हमारा प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ जो चर्चा है हम करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु 2 महीने तक वाराणसी में रुके थे, और प्रकाश आनंद सरस्वती और राम और सारमठाचार्य के बीच जो चर्चा है, जो आज जो हमने चर्चा किया उससे भी थोड़ा सा और मुश्किल रहेगा, तो आप थोड़ा सा संभाल के रहिए। हरे कृष्णा।